नाज़रीन, रात के प्रोग्राम में भी हम यमन पर आले सऊद की वैश्याना जारहियत के तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
यमन के खिलाफ सऊदी अरब की जारहियत नाम की तब्दीली के साथ बदस्तूर जारी है। सऊदी अरब ने जारहियत का आगाज आसिफतुल हज्म के नाम से किया था, जो अब तब्दील होकर इआदतुल अमल यानी बहाली उम्मीद ऑपरेशन हो गया है, वरना जमीन पर न तो सियासी लिहाज से कोई तब्दीली हुई है और न अस्करी एतबार से हालात में कोई फर्क नजर आ रहा है। सऊदी अरब की बमबारी जारी है और जमीन पर अंसारुल्लाह तंजीम, फौज और रजाकार फोर्सेज, ये के बाद दीगर महाजों को अलकायदा और मंसूर हादी के हामी अस्करियत पसंदों से आजाद करा रही हैं। सऊदी अरब ने 185 तैयारों के साथ आसिफतुल हज्म के नाम से यमन पर जारहियत का आगाज किया और इस ऑपरेशन में कई मुल्कों को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों ने इस दलदल में कदम रखने से इनकार कर दिया और सऊदी अरब ने इस मरहले पर खुद को तन्हा देखा तो उसने ऑपरेशन का नाम बराए नाम तब्दील कर दिया और आसिफतुल हज्म ऑपरेशन खत्म कर दिया। इस तरह उर्दून, मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्कों के लिए रास्ता खुल गया कि वो यमन के बहरान से किनारा कशी कर लें। चुनांचे सऊदी अरब के किसी भी अहदेदार ने इस नए ऑपरेशन में किसी शरीक मुल्क का नाम जिक्र नहीं किया है। सऊदी अरब ने आसिफतुल हज्म ऑपरेशन शुरू करके ये सख्त पैगाम देने की कोशिश की थी कि नए बादशाह के जमाने में सऊदी अरब की स्ट्रेटेजी में बुनियादी तब्दीली आ गई है और अब ये मुल्क अस्करी रास्ता अख्तियार करने में किसी पसोपेश में नहीं पड़ेगा, लेकिन चार हफ्ते की मुद्दत में इस ऑपरेशन का जो नतीजा सामने आया है उससे यही पैगाम सामने आया है कि इस मुल्क के पास दूरअंदेशी का शदीद फुकदान है और नतायज पर गौर किए बगैर जारहियत इस मुल्क के हुकाम की नातजर्बेकारी का शाखसाना है। मिस्र, उर्दून और पाकिस्तान ऐसे ममालिक हैं जिनकी सऊदी अरब से काफी माली इमदाद होती रही है, लेकिन हुकूमत रियाज ने अपने गलत फैसलों से इन मुल्कों को इतनी मुश्किल पोजीशन में पहुंचा दिया कि वो सऊदी अरब से हमदर्दी रखने के बावजूद उसका साथ देने पर खुद को तैयार न कर सके। दरअसना एक खबर ये आई है कि यमन के साबिक डिक्टेटर अली अब्दुल्ला सालेह ने मुल्क की तमाम जमातों से मुतालबा किया कि वो अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से पास होने वाली करारदाद पर अमल करें। ताहम सालेह के बयान की यमन के अंदर वसी पैमाने पर मजम्मत की गई और तहरीक अंसारुल्लाह समेत मुतादित सियासी जमातों ने अपने मौकिफ का इआदा करते हुए कहा कि मुजाकिरात का दरवाजा हमेशा खुला है, ताहम मुजाकिरात किसी भी दबाव में नहीं होंगे और यमन के खिलाफ सऊदी अरब की जारहियत एक अलग मसला है जिसके खास सियासी और साम्राज्य अहदाफ हैं। इस जारहियत का यमन के सियासी मुजाकिरात से कोई लेना देना नहीं है। उधर सऊदी अरब के वजीर दाखला और यमन के खिलाफ जारहियत में बुनियादी किरदार के हामिल मोहम्मद बिन नायफ ने रियाज में यमन के मफरूर और मुस्ताफी सदर मंसूर हादी से मुलाकात करके कहा कि यमन और सऊदी अरब का अमन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मोहम्मद बिन नायफ के इस बयान के सिलसिले में तजिया निगारों का कहना है कि सऊदी अरब के हमलों में यमनी अवाम को होने वाले भारी जानी और माली नुकसान की वजह से सऊदी अरब पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है और सऊदी हुकाम इस दबाव की वजह से परेशान है और अपनी जारहियत को अलग अलग नाम देने की कोशिश कर रहे हैं।
नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में मुलाहिज़ा फरमाया, आले सऊद की हुकूमत ने अपनी ही ऐलान करदा जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी और बेगुनाह आम शहरियों, औरतों और बच्चों के कत्लेआम का सिलसिला जारी रखा है। हालांकि इसको जंग भी नहीं कहा जा सकता कि इसकी बंदिश की बात हो। जंग में दो फरीक होते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। यहां तो एक तरफा वहशियाना जारहियत है और सऊदी हुकूमत ने बिला इश्तियाल जारहियत शुरू की है। यमन की फौज, अवामी इनकलाबी तहरीक अंसारुल्लाह और यमन के अवाम ने न सऊदी हुकूमत पर हमला किया था और न ही हमले की धमकी दी थी। हाँ, उन्होंने आले सऊद से यह मुतालबा जरूर किया था कि यमन के दाखिली मामलात में मुदाखलत न करे, अलकायदा और उससे वाबस्ता दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्ट पनाही बंद कर दे, यमन की सियासी जमातों को मुजाकरात के जरिए अपने मसाइल हल करने दे। क्या आजाद रहना जुर्म है? क्या किसी हुकूमत को अपने मुल्क के दाखिली उमूर में मुदाखलत की इजाजत न देना और अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम देना और मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने की कोशिश करना गुनाह है, और वो भी ऐसा गुनाह कि उस पर 10 हुकूमतें मिलकर हमला कर दे? ये कैसी नाइंसाफी है कि सऊदी हुकूमत ने अपनी हम ख्याल और पिट्ठू हुकूमतों को मिला के यमन के अवाम पर वैश्याना जारहियत तकरीबन एक महीने से जारी रखी है और किसी भी बैन अल-अक़वामी इदारे और नाम नहाद बैन अल-अक़वामी बिरादरी ने न सिर्फ ये कि यमन के मजलूम अवाम का साथ नहीं दिया बल्कि पूरी कौम को बागी कह दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गासिब सेहूनी हुकूमत और उसके इत्तेहादी पूरी फलस्तीनी कौम को दहशतगर्द कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायजा लेंगे कि आले सऊद ने तमाम बैन अल-अक़वामी कवानीन और कन्वेंशनों को पैरों तले रौनते हुए यमन पर जारहियत जारी रखी है। इस पर बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुहाफिजीन और इंटरनेशनल कन्वेंशनों के पासदारों ने खामोशी क्यों अख्तियार कर रखी है? यमन पर आले सऊद की वहशियाना जारहियत में औरतें और बच्चे शहीद हो रहे हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं? आले सऊद ने यमन पर वहशियाना जारहियत में फास्फोरस बम और डिप्लेटेड यूरेनियम के हामिल बम गिराए हैं, इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया? और सबसे बढ़कर ये कि आले सऊद ने हमले बंद करने का ऐलान करने के बावजूद हमले क्यों जारी रखे हैं? हमारे आज के प्रोग्राम में लंदन से बर्रे सगीर के मुमताज दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर एजाज हुसैन, दिल्ली से हिंदुस्तान के सीनियर सहाफी और मुमताज तजिया निगार शकील शमसी और इस्लामाबाद से पाकिस्तान के मुमताज तजिया निगार सी आर शमसी हिस्सा लेंगे। गुफ्तगू का आगाज करेंगे डॉक्टर एजाज हुसैन से जो हमारे लंदन स्टूडियो में मौजूद हैं। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब आले सऊद की हुकूमत ने 21 अप्रैल को ऐलान किया था कि यमन पर जारहियत के सारे अहदाफ पूरे हो गए हैं इसलिए हमले बंद किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने हमले जारी रखे हैं। जब अहदाफ पूरे हो गए थे तो हमले क्यों जारी रखे गए हैं?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपने अपने इब्तिदा में ही कहा कि सऊदी अरब जिस तरह कर रहा है बिल्कुल इसी अंदाज से उसी पैटर्न पे उसी टेम्पलेट पे वो अटैक कर रहा है यमनी निहत्ते सिविलियंस पे, जिस तरह इसराइल जो है इसराइल की गवर्नमेंट अपनी आईडीएफ के थ्रू निहत्ते पैलेस्टीनियन सिविलियंस पर हमले करते हैं। अब मैं यहाँ बताता चलूँ, पिछले दिनों में ये दो चार रोज पहले ये बात चल रही थी अरब वर्ल्ड के जीसीसी और अरब लीग के लोगों में कि देखें पिछले बरस जुलाई अगस्त में जो 50 दिन की 49 दिन की जो इजरायली दहशतगर्दी थी निहत्ते फलस्तीनी सिविलियंस पे, उसके बाद तकरीबन 2200 के करीब 2200 बेगुनाह शहरी फलस्तीनी जो हैं वो शहीद किए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। एक छोटा बच्चा अगर कंकर लेके आता है कंकर फेंकता है सिंबॉलिकली उस नफरत का इजहार करता है जो सहयूनी और जायनिस्ट जो एग्रेशन के खिलाफ है, तो उसका मुकाबला जो आईडीएफ के टैंक्स जो हैं वो उससे करते हैं और उसे उड़ा देते हैं और इजरायल के मोटर फायर और आर्टिलरी जो है शेल से उसका जवाब दिया जाता है, एक छोटे से कंकर का जवाब इजराइल देता है। बैन ही उसी टेम्पलेट पे चलते हुए हम देखें कि अपनी कल्चर में अपनी रिसर्च में आज से सदियों पहले आज से दहाइयों पहले ये बात कहते आ रहे हैं यहूद और सऊद, तो आज इस मार्का में सऊदी अरेबिया ने ये साबित कर दिया है कि हम यहूद ही हैं, हम हमारा तरीकाकार जायनिस की तरह का ही है और हम भी वैसे दहशतगर्दी से। आज देखिए ये जो बातें हो रही थी तो सऊदी अरब ये भी शायद दावा करने लग पड़े कि पिछले बरस 49 दिनों की ये तो जंग कहते हैं लेकिन वो हम दहशतगर्दी कहते हैं अग्रेशन कहते हैं और कि उसमें इसराइल ने 2200 निहत्ते शहरियों को शहीद किया वहां पे गाजा में, तो आज देखिए इसराइल सऊदी अरब पीछे नहीं रहा। सऊदी अरब ने अब तक देखिए चार हफ्तों के अंदर 1100 से ज्यादा निहत्ते बेगुनाह बच्चे बूढ़े ख्वातीन को उन्होंने शहीद कर दिया यमन में। तो अब देखिए अंदाज देखिए अस्करी अंदाज देखिए जंग लड़ने का अंदाज, जंग वहां होती है आपने सही फरमाया इब्तिदा में जहां दो पहलवान इकट्ठे होते हैं एक ही तरह की ताकत रखते हैं यानी 45% और 55% की तो ताकत का मवाजना या इक्विलिब्रियम रह सकता है, लेकिन एक तरफ ताकत 0% हो जहां ना बम हो ना जहां बंदूक हो ना गोली हो ना पिस्टल हो ना आर्टिलरी हो ना मेन बैटल टैंक्स हो और निहत्ते सिविलियन अपने हक के लिए उठे हों और उसका जवाब दिया जाए दूसरी तरफ से जो है एयर रेड से जवाब दिया हेल फायर मिसाइल से जवाब दिया जाए स्टिंगर मिसाइल से जवाब दिया जाए जैसे आपने कहा और ममनूहा उस असलहे को इस्तेमाल किया जाए जिसके बारे में कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस का उसको ना इस्तेमाल करने का। तो आप देखिए ये कहां की जंग है, जंग तो है नहीं। मैं सबसे पहले बताता चलूं इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल्स पे, देखिए किसी को इजाजत नहीं है जो यहां बीबीसी, जो स्काई या सीएनएन जो करता है उसी को फॉलो किया जाता है, अल जजीरा के लोग भी बाकी, या किसी इंडिपेंडेंट चैनल को, टीवी चैनल को एंट्री की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से हमें सही हकीकत पे मबनी वहां से खबरें नहीं आ रही, यमन से, सना से या अदन से। अब जिस वक्त वो आने, देख लीजिए ये चाहते क्या, सबसे पहले हमें इस चीज का प्रचार करना पड़ेगा अपने प्लेटफॉर्म से कि ये बागी नहीं है, दे आर नॉट द रेबल्स एज द वेस्टर्न मीडिया इज पोर्ट्रेइंग देम। ये लोग कौन है? ये यमनी बाशिंदे हैं, यमनी शहरी हैं। मैं बताता चलूं 10-12 जल्दी जल्दी आपको पॉइंट्स बताता चलूं, यमन के रहने वाले यमनी शहरी हैं, ये लॉ अबाइडिंग यंगस्टर्स हैं, ये तालीम याफ्ता लोग हैं, ये सियासी बसीरत वाले लोग हैं, ये हूसी जो हैं, ये जो हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं यमन की अंदर पीस लाने के लिए, जमहूरियत लाने के लिए, ये जमहूरियत पसंद लोग हैं, ये पीस लविंग लोग हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये लोग इलेक्शन चाहते हैं जो जमहूरियत का हुसन है, प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी चाहते हैं, और ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहते हैं जिसका एहतसाब हो सके, जो मंसूर हादी जैसे लोग जो हैं, जो पपेट्स हैं उसकी तरह के ना आए, जो दीगर अरब ममालिक में नजर आते हैं, 22 अरब ममालिक में जो नजर आते हैं। और फिर ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कोई डिक्टेशन ना हो, कोई यहूदी या सऊदी इनको डिक्टेशन ना दे, और बाहर से किसी भी यहूदी या सऊदी की इंटरफेरेंस इनके अंदरूनी मामलात में ना हो। ये 12-14 चीजें मांगने वाले यूनाइटेड नेशन का चार्टर या इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ की जो नॉर्म्स हैं उसके एन मुताबिक है। अब ये जो चीजें मांग रहे हैं ये, तो क्या इस ऐसी चीजें मांगने वाले को आप बागी कह देंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और मुमताज तजिया निगार सी आर शमसी साहब मौजूद हैं। शमसी साहब अस्सलाम वालेकुम। शमसी साहब, गजा पर सहूनी हुकूमत और यमन पर सऊदी हुकूमत के हमलों में क्या फर्क है?
जी वालेकुम सलाम। देखिए जी, अभी जो बड़ी तफसील से बात हुई है कि जो जुल्म होता है उसको आप जुल्म ही कहेंगे। यमन से और गजा का एक बड़ा बुनियादी फर्क तो जाहिर है कि आप जानते हैं, लेकिन इस जो यमन पे हमला हुआ है एक मुसलमान बड़े मुल्क के बड़े भाई की और एक हमसाए छोटे मुल्क पे, और जहां जो अभी इतलात आ रही हैं वो यकीनन काबले तारीफ नहीं कहा जा सकता। और एक जो जिस तरह बेगुनाहों को वहां वो शहीद हो रहे हैं, बच्चे जो हैं, और अभी जो इत्तलात आई है कि 100 के करीब बच्चे जो है वो शहीद हो चुके हैं इस हमले में, तो इसमें बात अब तो आगे जा चुकी है। और इसमें भी जो मैं दोस्त बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाऊंगा कि इस एक महीने की इस जंग में, जिसको जंग का नाम दिया गया है, इसमें एक चीज अब खुलकर सामने आ गई है कि ये कोई वहां कोई बाहर के लोग नहीं है, या कोई वो जिस तरह उनको इल्जाम दिया जा रहा है, मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं, बगावत के नाम दिए जा रहे हैं, ये बात अब हकीकत की तरह खुल के आ गई है कि वो वहां के धरती के वहां के लोग हैं और उनका एक सियासी मसला है और एक उनकी जो ख्वाहिश है जिसको वो अपना एहतजाज का नाम दे रहे हैं। और उस एहतजाज को अगर कोई दूसरा मुल्क अपने जंग का नाम देकर उन पर हमलावर होता है तो उसको कहीं भी दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। पाकिस्तान ने इस वक्त देखे कि जो हमारी पार्लियामेंट था, मुश्तरका इजलास हुआ है, उसमें खुलकर पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों की जो आरा सामने आई है कि इस मामले में अगर तूल दिया गया और इसमें कोई फरीक बना गया तो ये जो जंग है जो मुसलमानों के दरमियान जो पहले ही साम्राज्य जो है तकसीम दर तकसीम हमें करता जा रहा है, और आज हम लीबिया से लेकर और जो अफगानिस्तान तक जो आग लगी हुई है और शाम से जो अब यमन में एक नया रंग देकर उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमें असल जो दुश्मन है, असल जो इसके पीछे एक स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, उनको देखना होगा और मकासद क्या है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो ईरान की जानब से अभी जो ईरान के वजीर खारजा इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे, उन्होंने जो एक फार्मूला दिया था वो बहुत बड़ा एक साहिब, और जिसको मैं समझता हूं कि तमाम महजब जो एक जमहूरियतें हैं जहां मजहब लोगों ने इंसानी हकूक की कदर करने वाले लोगों ने उस मंसूबे की उस फार्मूले की तायद की है और पाकिस्तान ने भी उसी सोच को और पाकिस्तान की पार्लियामान ने भी यही रास्ता दिया है कि इस मामले को इफाम तफहीम के साथ और सियासी इसका हल तलाश किया जाए, जंग इस मसले का हल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने बड़े दो टोक अल्फाज में इस मामले से इस जंग से दूर रहने की बात की है। जहां तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, वहां के हमारे मुकद्दस मकामात हैं जिस पे हमारी जानें भी कुर्बान हैं, वहां अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो यकीनन तमाम मुसलमान उम्मा का एक कंसर्न होगा। लेकिन इस वक्त जो जमीनी हकायक हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो इस स्क्रीन में दुनिया में आज मीडिया है, एक ग्लोबल विलेज है कि वहां तो एक हमला हुआ है यमन पर और यमन में इस वक्त खंडर बन रहे हैं और वहां जो लोग इंसानी हकूक की हम बात करते हैं और अभी मगरबी मीडिया की भी बात हुई, मगरबी मीडिया को भी वो असल सूरत हाल सामने लानी चाहिए ताकि जो यमन के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पर लाने के लिए जो फ्री कैन है या इस वक्त जो तुर्की है, पाकिस्तान ने पेशकश की है एक मुनासब एक मौसर और एक मुस्बत रोल अदा करने का। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है इस वक्त कि इसमें हमें अमेरिका का इस वक्त जो रोल नजर आता है, यूनाइटेड नेशन का जो एक मिस्टीरियस रोल नजर आता है उस पर इस्लामी उम्मा को, और अभी हैरान कुन बात है कि अभी तक ना OIC का कोई ऐसा सामने चीज आई है, ना अरब लीग ने तो पहले ही एक उसकी एक तौसीक करते हुए एक मैं समझता हूं कि जिस तरह लीबिया तबाह हुआ उसके सामने इराक तबाह हुआ, अफगानिस्तान तबाह हुआ, उस वक्त जो मुजरमाना खामोशी इख्तियार की गई, अब भी तासर यह बन रहा है कि एक यमन पर एक मुसलमान मुल्क पर एक जहां लोगों का जाति मसला है एक सियासी मामला है उसको अगर टारगेट करने में अगर इस्लामी उम्मा खामोश रहती है और इस खामोशी को मैं समझता हूं कि इसके नतायज जो होंगे आने वाले दिनों में और जो हालात बैनुल्कवामी सतह पर बन रहे हैं उसको देखते हुए तो मैं समझता हूं कि OIC और इस्लामी उम्मा जो हम एक ताकत है और अरब और अजम के दरमियान जो एक तफरीक फैलाने की साजिश के जरिए उसको मजीद वुस्सत दी जा रही है, अगर इस खलीज को ना पाटा गया, ये कुर्बत ना हुई तो खुदा ना खास्ता इसके नतायज जो हैं वो पहले ही इस्लामी दुनिया इस वक्त जेरे ताब है, उसको जहां जहां भी वो कोई असूल की बात करता है, जब मुसलमान मुल्क कोई कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक आजादी के उसको भी दहशत गर्दी का नाम देकर उन तहरीकों को उस हकूक की जंग को उस आजादी की जंग को और एक उभरता हुआ जो इंसानी माशरा है एक तरक्की करते हुए जो समाज को रास्ता रोकने की ये मैं समझता हूं साजिश है जिसको हमें बड़ी गहराई के साथ समझना होगा और इसको इस मामले को यमन की जो इस वक्त इंसानी हकूक मैं समझता हूं कि वो उसको देखना होगा वगरना हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया और चलते हैं दिल्ली जहां हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार शकील शमसी साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी शकील साहब, जनाब जंगों में ज़ख्मियों की मुंतकली और इमदादी कार्रवाइयों की इजाज़त होती है और रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट की टीमें हत्ता मैदान जंग में भी ज़ख्मियों की मरहम पट्टी के लिए आज़ाद होती हैं और बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जंग के किसी भी फरीक को रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के दस्तों पर, उनकी गाड़ियों पर और उनके ट्रांसपोर्ट के वसाइल पर और उनके अफराद पर हमला करने की इजाज़त नहीं होती। अभी दो दिन कबल आल सऊद ने ईरान की रेड क्रिसेंट के तैयारे को जो यमन में ज़ख्मियों के लिए दवाएं और यमन के मजलूम अवाम के लिए खाने पीने की अशिया लेकर जा रहा था उसको मार गिराने की धमकी देकर वापस होने पर मजबूर कर दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए शाफा साहब, आपने भी खुद ये बात कही कि ये जंग है नहीं, ये जारहियत है और जारहियत जो है उसमें कोई उसूल और जवाबित होते नहीं है। वैसे भी जो जंगें अमेरिका के लिए लड़ी जा रही हों, जो जंगें दुश्मनान इस्लाम के लिए लड़ी जा रही हों या जो हमले दुश्मनान इस्लाम को फायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हो, उसमें किसी मॉरेलिटी का बात करना या ये कहना कि ऐसा क्यों नहीं करने दिया और रेड क्रिसेंट के साथ क्यों होना चाहिए और जो लोग वहां पर इमदादी और तिब्बी काम करने जा रहे हैं उनके साथ क्यों सलूक होना चाहिए, वो सब बातें वहां होती है जहां पर किसी किस्म का मॉरल हो। खुद यमन पर हमला करने का ही क्या मॉरल है, या उसकी कौन सी बुनियाद है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमला किया गया और जिसको जायज करार देने की कोशिश की जा रही है पूरे सऊदी अरब के और उसके हलीफों की जानिब से। अगर कोई कौम अपना हक मांगने के लिए खड़ी होती है किसी मुल्क में तो और उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, तो वो हर तरीके के रास्ते अख्तियार करती है और उसमें मसला जद्दोजहद भी होती है। वहां की हुकूमत अगर चाहे तो उनको दबा दे, वहां की हुकूमत चाहे तो उनसे मुसालिहत कर ले, वहां की हुकूमत चाहे तो उनके साथ गुफ्तगू कर ले। बाहर की किसी हुकूमत को क्या ये हक हासिल है कि वो वहां जाकर बमबारी करे और अपने मर्जी का आदमी थोपने की कोशिश करे? ये हौसियों की नहायत शराफत थी कि उन्होंने मंसूर हादी को कत्ल नहीं किया, जिसका फायदा सऊदी अरब उठा रहा है। जब उन्होंने गिरफ्तार करके उसको सजाती महल में कैद किया हुआ था, उस वक्त अगर उन्होंने मार दिया होता तो यह किस्सा तमाम हो जाता। लेकिन वो हौसी शरीफ लोग हैं, हौसी उसूल के पाबंद लोग हैं, उन्होंने गिरफ्तार करने के बाद उनको कत्ल नहीं किया और जिसका फायदा उठाकर वो चुपके से भाग गया और फिर अदन पहुंचा और फिर उसके बाद सारी हंगामाराई शुरू हुई है। तो जो जो इस वक्त हालात हैं उसमें यह सवाल उठाना कि उन्होंने इमदादी जहाज को वापस कर दिया या दूसरी रसद नहीं पहुंचने दे रहे हैं, वहां के लोगों को खाना नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो ये इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि जिन लोगों के जो लोग जारहियत पर आमादा हैं उन्होंने कभी इंसानी हुकूक की बारे में सोचा ही नहीं। अपने मुल्क के लोगों के इंसानी हुकूक की पामाली जितनी सऊदी अरब ने की किसी ने नहीं की दुनिया में। छोटे 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 जराइम के ऊपर आम लोगों को फांसी पर चढ़ा देना और बादशाहों को और शहनशाहों को और उनके लड़कों को और उनके नस्ल के लोगों को माफ कर देना बड़े से बड़े जराइम के लिए, ये उनकी आदत रही। तो हुकूक इंसानी और सऊदी अरब दो अलग अलग चीजें हैं। उनके यहां हुकूक इंसानी नाम की कोई चीज न वहां के शहरियों के लिए है न दूसरे शहरियों के लिए हो सकती। तो ये तो सोचने की बात भी नहीं है कि वो कभी ये चाहेंगे कि यमन में वो वहां पर यमन के लोगों के लिए इस तरीके का सामान पहुंचाने की कोशिश करें। अब इंटरनेशनल बिरादरी जो है उसको ये देखना है कि किस तरीके से इस जंग में मुदाखलत की जाए, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता और खासतौर से रूस को इसमें बहुत सख्ती से कदम उठाना होगा, क्योंकि रूस की खामोशी जो है वो इस मामले को एग्रीवेट कर रही है और रूस को अब चाहिए कि वो अमली तौर पर इसमें आए और वहां के ऊपर आकर मुदाखलत करे, तभी वहां के हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं और ये जो जुल्म जोर जारी है वहां के यमन के बाशिंदों पर इसकी रोकथाम हो सकती है। वरना वहां के लोगों को दाने दाने को तरसा कर मार देंगे ये लोग और वहां के लोगों को दवा की एक एक बूंद के लिए लोग तड़पाएंगे, वहां के लोगों को हर तरीके की परेशानियों में मुब्तला करेंगे ताकि वो सरेंडर करें, जो कि मुमकिन नहीं है, वो सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन ये इसको रोकने के लिए बैनुल अक्वामी ताकतों को आना पड़ेगा और खासतौर से रूस और चीन की जैसी ताकतें जो है इनको इसमें मुदाखलत करना पड़ेगी, वरना अमरीका पूरे इलाके को फिर से हड़प कर जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। जनाब आले सऊद जो हैं वो सालिसी की बात भी कर रहे हैं, एक बार उन्होंने फिर दावत दी कि सारे यमनी ग्रोह जो हैं वो रियाज में आए और उनकी सरपरस्ती में उनकी सालिसी में मुजाकरात करें। सवाल ये पैदा होता है कि आले सऊद जो खुद फरीक बन चुके हैं, हमला करके यमन के अवाम के मुकाबले पर आ चुके हैं, उन्हें क्या आप सालिसी का कोई हक रह गया है?
जी शुक्रिया। मैं आपको यहाँ पे इब्रानी जबान जो है ना हिब्रू, जिसकी एक जरबल मिसल आपसे शेयर करता हूँ। वो उस जरबल मिसल में कहा जाता है कि सियाने लोगों ने हिब्रू जबान में लिखा कि जो लोहार होता है उसे चाहिए कि अपनी भट्टी को उतना ही गर्म करे कि जितनी उसको जरूरत है। अगर उसने हद से ज्यादा अपनी भट्टी को गर्म कर दिया तो उसी भट्टी की हरारत में गिर कर जल जाने का एहतमाल भी है। मैं सऊदी अरब के बारे में यही देख रहा हूं कि एक हद तक वो अपनी जुल्म बर्बरियत जो है वो उसका करता है। इस वक्त देखिए ज्योग्राफिकली जो कि टेरिटरीज हैं सऊदी अरेबिया की, साउथ की और मशरक की, जो यमन के साथ और ओमान के साथ मिलती हैं, वहां पहले सी खामोश सी एक इनकलाब, पहले से एक खामोश सी नफरत सऊदी रॉयल फैमिली के खिलाफ पाई जाती है। कभी कभी वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती हैं, लोग उठते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, जदोकोब किया जाता है, पाबंद सलासल कर दिया जाता है। तो मैं आज जो मुझे नजर आ रहा है फ्यूचर का सऊदी अरेबिया, वो इस तरह है कि कोई शख्स अपनी कश्ती लेके किसी समुंदर से जा रहा हो, उसी कश्ती में खुद सौराख करना शुरू कर दे और डूब के वो हलाकत की मौत मर जाए जाहिलियत के जमाने की तरह। सऊदी अरब का जो मैं हाल देख रहा हूं वो सर्बिया का है। 1989 में जब युगोस्लाविया में इसी तरह की सिचुएशन पैदा हुई तो जो मिलिट्री पावर थी वो सर्बिया की थी। सर्बिया ने दीगर छोटी छोटी जो स्टेट्स थी जो कि आजाद होना चाहती थी, मैसेडोनिया जिसमें हो गया, जिसमें बॉस्निया हो गया, हर्सेगोविना हो गया, जिसमें क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, इनको दबाया और इनपे जुल्म किया, इनपे उन्होंने दहशतगर्दी बमबारी सारे किए, इनको इनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की छोटी स्टेट्स को। हुआ क्या एंड में कि सर्बिया से खुद भी सब कुछ जाता रहा। वही लोग जो सर्बिया में जो बहुत बड़े दो पावरफुल लोग थे, एक का नाम था स्लोबोडन मिलोशेविच और दूसरे का नाम था रेडवन काराजिच, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वॉर क्राइम्स पे, जेनोसाइड्स पे वो ट्राई हुए और उन्हें लॉन्ग इंप्रिजनमेंट जो है वो सजा मिली। मैं जो सऊदी अरब का फ्यूचर देख रहा हूं, एक तो मैं देख रहा हूं कि ये साउथ और मशरक का और जनूब का जो सऊदी अरब का इलाका है, इसमें बड़ी जल्दी अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया, अपनी भट्टी को ठंडा ना किया, तो ये भट्टी इनको यहां तक जला के सऊदी अरब के 1/3 जो है मशरक और सा और जनूब का इलाका वहां तक ये आ जाएगी, फैल जाएगी। और फिर पता क्या होगा, सऊदी अरब का हाल होगा पॉम्पे की तरह, रोमन जो सिटी था ना, बहुत मॉडर्न सिटी था, उसका हतरा हाल होगा। ये बड़ी बड़ी फलक बोस इमारतें जो हमें नजर आती हैं रियाद में, जद्दा में, दुबई में, अबू धाबी में और कतर में, दोहा में, ये इनका हाल उसी तरह होगा जैसे कि पॉम्पे की बिल्डिंग्स का हुआ था। फिर हाथ मिलते ये नीरो की तरह बांसुरी बजाते रहेंगे सऊदीज। और हाल ये है कि एक माउंट वेसुवियस जो है, वेसुवियस वो आ गया किसी तरीके से, तो ये भट्टी में खुद गिरेंगे। सऊदी अरब को अकल के नाखून लेने चाहिए और इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये 21वीं सदी है, इसमें किसी किस्म की जारहियत, वैश्याना जो है, चीरा दस्तियां, ये इसमें फिट इन नहीं होती। और सही फरमाया शमसी साहब ने न्यू दिल्ली से कि अब रूस को और चाइना को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, जो मुझे नजर आ रहा है अगले एक दो हफ्तों में। अगर मुसलमानों का 22 अरब मुसलमानों का, 22 मुल्कों का, 22 रियासतों का और 6 जीसीसी के इन मुसलमानों का अगर जमीर मुर्दा हो गया है और ये बिल्कुल इस वक्त जो है तबाही और बर्बादी के दहाने पे आ गए हैं, तो कम से कम गैर मुस्लिम ही उठेंगे, रशिया उठेगा और चाइना उठेगा और जिनका वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में, ये आके फिर अपना रोल प्ले करेंगे, जो दिन दूर नजर नहीं आ रहा अगले चंद हफ्तों में। क्योंकि जो 4 पॉइंट का जो फार्मूला जो ईरान ने दे दिया है, यही एक फार्मूला है जो इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन के चार्टर, इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी उसके साथ कॉन्सनेंस रखता है, मुताबकत रखता है। सूनर और लेटर इन्हें यह जंग बंदी करनी पड़ेगी, डायलॉग के लिए आना पड़ेगा, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट इन्हें फॉर्म करना पड़ेगी जिसमें हूसियों का, उनकी एज अ स्टेक होल्डर उनका रोल होगा, जब ही जाकर यह प्रॉब्लम हल होंगे। अदरवाइज ये होगा क्या, दूसरा एक्सट्रीम ये है कि अगले चंद हफ्तों के अंदर ये जो वॉर जो है, जो वॉर मुसल्लत की गई है नियते लोगों पे, ये मशरक और जनूब जो सऊदी अरब का 1/3 इलाका एक तिहाई है उसकी तरफ बड़ी जल्दी मुंतकिल होने वाली है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहां पर हम एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद गुफ्तगु आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ में गुफ्तगु हो रही है यमन पर सऊदी जारहियत के बारे में। चलते हैं इस्लामाबाद, सीआर शमसी साहब। शमसी साहब, जनाब अमेरिका ने यमन पर सऊदी जारहियत में बराह रास्त अपनी अफवाज नहीं भेजी, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों की हुकूमतों को यमन पर जारहियत में सऊदी हुकूमत का साथ देने का हुक्म दिया है। चुनांचे अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान की हुकूमत पर भी दबाव डाला था कि इस जारहियत में सऊदी हुकूमत का साथ दिया जाए। इससे साफ जाहिर है कि इस जारहियत में अमेरिका का मफाद तो 100% है। यमन पर वहशियाना जारहियत में सऊदी हुकूमत या उसके इत्तेहादी मुसलमान मुल्कों का कोई मफाद आपको नजर आता है?
इससे साफ जाहिर है कि इस जारहियत में अमेरिका का 100% यमन पर वैश्याना जा रही है अपने सऊदी हुकूमत या उसके इत्तेहादी मुसलमान मुल्कों का कोई वकार आपको नजर आता है?
जी, बहुत आपने अपने सवाल में बहुत अहम एक जो नुक्ता उठाया है कि इसमें आखिर इस सारे खेल में, इस खूनी खेल में जो बेगुनाह एक बच्चे मारे जा रहे हैं, कि आखिर इसका मकसद क्या है, इसका किसको फायदा हो रहा है? अमेरिका की आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि इससे पहले जो यमन की आज सूरत हाल हम देखते हैं, अगर वो दाखिली इंतशार का और जो भी वहाँ हालात हैं, जो गुर्बत है, उसमें अमेरिका का और बाहर की ताकतों का बड़ा पूरी तरह हाथ शामिल है। और अभी आप देखें कि जब ये जंग शुरू हुई है तो वहां से अमेरिका के ऑलरेडी वहां जो ड्रोन अटैक के वहां अड्डे मौजूद थे वो उन्होंने खामोशी से हटा लिए, वो जो अलकायदा के खिलाफ उन्होंने नसब किए थे। आज तो वहां अलकायदा भी इस खुलेआम उसका फायदा उठा रही है और उन्होंने एक जेल तोड़ के 300 के करीब अपने जो लोग निकाल लिए हैं। इसी तरह दाइश की जो अमन की दुश्मन तंजीमें हैं वो बाकायदा ऐसा लगता है कि अमेरिका उनको खुला खेल खेलने की एक इजाजत दे रहा है और उसको एक रास्ता हमवार कर रहा है। जहां तक पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहां उस तरह कोई फर्द वाहिद जो है फैसले नहीं करता, और क्योंकि हम एक तजर्बे से गुजर चुके हैं इंफरादी फैसलों के नतायज देखते हुए, पाकिस्तान की पार्लियमान ने तमाम तब दबाव के बावजूद, और यकीनन आपने जिस जानब इशारा किया है कि पाकिस्तान पर तो हर तरफ से दबाव आया है और दबाव आ भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बड़े दो टोक अंदाज में, और हमारी इस वक्त जो अपनी सूरत हाल है, एक दहशतगर्दी की जंग हम खुद लड़ रहे हैं आलमी अमन के लिए, और हमारी फौज जो है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे 60,000 के करीब शहरी शहीद हो चुके हैं, हम किसी इसी ऐसे जो मामला है जो किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर हम तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आज जो अभी दूसरे मेरे मोहतरम बात कर रहे थे कि अगर ये मामले को ना रोका गया और इसका जो आने वाला मंजरनामा उन्होंने किया है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बल्कि उससे पहले जो है हमारी जो इस्लामी उम्मा है, जो दावा करते हैं हम कि हम एक बड़ी ताकत हैं, उनको इस आने वाले खतरात से और पूरी इस्लामी दुनिया को बचाने के लिए और खास तौर पर इस्लाम के तशख्स को बचाने के लिए, अपनी शिनाख्त को बचाने के लिए, यमन के अंदर फिल फोर जो है एक जमहूरी अमल शुरू करना चाहिए। और जाहिर है कि उसमें सऊदी अरब जो है वो तो एक फरीक बन चुका है, वो इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं, जो आलमी फोरम हैं, उनको एक फौरन इससे पहले कि ये बेगुनाह जिंदगियां मजीद निशाना बने बमबारी का, जो एक मंजरनामा हम फिर कल, अगर आज हम इस मंजर पर खामोश हैं, यहां बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो फिर हम अगर कल फलस्तीन पे या गजा पे जो एक बरसा बरस से आग बरसाई जा रही है तो उस पे हम क्या कहना क्या कहेंगे? तो मैं समझता हूं कि हमें किसी नए दोहराए पर जाने से पहले इस वक्त फौरी तौर पर इस अमल का, और बिल्कुल जो रूस की जानिब से बात की गई है, रूस ने तो बहुत पहले एक इंसानी हकूक के हवाले से यह मुतालबा किया था कि वहां बमबारी रोकी जाए और ताकि लोगों को खाने पीने की अदवियात की चीजें पहुंच सके, क्योंकि वो अगर लड़ाई तो एक कबीला लड़ रहा है, बाकी पूरी आवाम का तो कोई कसूर नहीं है जो जंग में शामिल नहीं है या किसी सियासत में शामिल नहीं है या कोई इक्तदार में शराब, उनका कोई मकसद नहीं है, वो तो अपने मुल्क के लोग हैं, वो अपनी जिंदगियां बचाने के लिए, और इस वक्त इस मंजर को हमने ना बदला गया, और इंसानी हकूक की तंजीमें और खुद सऊदी अरब की क्यादत को मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना मौका बदला है।
शमसी साहब कहा है कि यहां पर हम इस बात की वजाहत कर दें कि शमसी साहब की सीआर शमसी साहब की इस बात से हम कतई इत्तेफाक नहीं करते कि जंग एक कबीला लड़ रहा है। जंग तो अव्वल बात, पहली बात तो यह कि जंग यमनी लड़ ही नहीं रहे, दूसरी बात यह कि पूरी यमनी कौम मुत्तहिद है, यमन का हर कबीला मुत्तहिद है, इस वक्त सिर्फ एक कबीला ऐसा नहीं है कि जो सऊदी अरब के मुकाबले में डटा हुआ है। बहरहाल चलते हैं दिल्ली शकील शमसी साहब के पास। शकील साहब, जनाब इराक, शाम, मिस्र, लीबिया, बहरैन और अब यमन, मशरक़ वस्ता और खलीज फ़ारस का कोई अरब मुल्क ऐसा नहीं है जो आले सऊद की रेशा दवानियों और फितना अंगेजियों से महफूज हो। आले सऊद का मसला क्या है? वो किसके मफाद में मशरक़ वस्ता और खलीज फ़ारस को जहन्नम में तब्दील कर देना चाहते हैं?
देखिए सऊदी अरब जो है वो मशरक वस्ता को मशरक खस्ता बनाना चाहता है, वो चाहता है कि हमेशा वहाँ खस्ता हाल रहे, वहाँ के अवाम जो हैं वो सुधरने ना पाए, वो जिंदगी में अम ना पाने पाए, और उसकी चौधराहट कायम रहे। और उसकी चौधराहट कायम रहेगी तो अमरीका और रूस के जो अमरीका और इसराइल के जो मनसूबे हैं वो पूरे होते रहेंगे, क्योंकि सऊदी अरब को अपने अपने लिए सियासत नहीं करना उस इलाके में, सऊदी अरब को मुसलमानों के लिए सियासत नहीं करना है, उस इलाके में अमेरिका की चौधराहट कायम करने के लिए और इसराइल के तहफ्फुज के लिए उसको काम करना है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। और जहां से भी अमेरिका मुखालिफ आवाज आएगी वहां पर वो कूदेंगे जरूर, और वो चाहेंगे कि उनके जरिए से अमरीकी मफादात की आबियारी हो। लीबिया में क्या था, अमरीका मुखालिफ आवाज, शाम में अमरीका मुखालिफ आवाज, यमन में जब से हौसियों ने मौत उल अमरीका के नारे लगाना शुरू किए उनके लिए मुसीबत बने, वरना इससे पहले यमन किन किन हालात से गुजरा और कैसे कैसे हालात से गुजरा है उस वक्त उनको फिक्र नहीं थी। लेकिन अमेरिका ने ये कोशिश, अमेरिका की ये पूरी कोशिश है कि वो मशरक वस्ता में अपनी चौधराहट को कायम रखे, और उसकी चौधराहट को कायम रखने के लिए उसके पास एक एजेंट की शक्ल में सऊदी हैं, कतर के लोग हैं, अरब इमारात के लोग हैं, और ये उनके मफादात को देख रहे हैं। तो यमन में सारी लड़ाई जो है, अगर कोई आदमी कहे कि कबायलियों के बीच में है और हौसियों के लिए, ये लड़ाई है ही नहीं वहां पर, हौसी जो लड़ रहे हैं वो अमरीकी इंटरेस्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं, और जो उनके साथ है अमरीका यमन की आधी फौज भी, जो आधी से ज्यादा फौज जो है वो हौसियों की तरफ है। और जिस तरीके से आपने देखा कि यमन में मुजाहरे हुए हैं इस फौजी हमलों के खिलाफ और जिसके हवाई हमलों के खिलाफ, जिस तरह लोग सड़कों पर निकल कर आए हैं, उससे मालूम हुआ है कि वहां किसी किस्म का मसला की इख्तलाफ भी नहीं है जो फैलाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। तो ये लड़ाई जो हो रही है वो अमरीका के मफादात की लड़ाई है, अमरीका को अपनी चौधराहट कायम करना है, अमरीका को अपना दबदबा बनाना, उसकी लड़ाई है पूरी यमन में। और शाम में भी यही था, शाम में भी क्या किया था इन लोगों ने कि एक जगह बगावत का नाम लेकर पूरे बाहर से मुल्कों से चुन चुन के दहशतगर्दों को जमा करना शुरू कर दिया। क्यों नहीं ये मिस्र में तरीका इख्तियार किया गया, यही क्यों नहीं मिस्र में बाहर से लाके दहशतगर्द भर दिए गए। तो ये जहां के ऊपर उनको जैसी सहूलत मिल रही वैसी वहां पर किया उन्होंने। और यमन में भी वो कोशिश यही करेंगे, आईएसआईएस को आप देख रहे हैं कि वो पैर पसारने लगी है वहां के ऊपर, अलकायदा पहले ही से, और सऊदियों ने जो काम किया है इसके पीछे जो सबसे बड़ी मंशा है वो यह है कि अलकायदा के लोगों को वो सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पर, जो अलकायदा उसको मजबूत करना चाहते हैं ताकि हमेशा अनारकी की सूरत हाल रहे। और आपको मालूम है कि उनके हमले के दूसरे तीसरे दिन ही 200 अलकायदा के जो शातिर दहशतगर्द थे वो वहां से फरार करवा दिए गए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया शकील शमसी साहब। इसी के साथ हम डॉक्टर एजाज हुसैन के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल जहां तक इसका सवाल है कि मिस्र में वो काम उन्होंने क्यों नहीं किया जो यमन में किया, मिस्र में उन्होंने फौजी बगावत करवा दी, यमन में फौजी बगावत वो नहीं करवा सके। और जहां तक हौसियों का सवाल है तो ये बता दें कि हौसी और अंसारुल्लाह ये लीड कर रहे हैं उस मुजाहमत को जो अब यमन के अवाम सहूनी और साम्राज्य हलकों के मुकाबले में कर रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में हमें नाजरीन की राय का भी इंतजार रहेगा, और इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाजरीन से इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।